ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् तपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथम् शरणम् प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथम् शरणम् प्रपद्ये। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृदः कस्य स्विद्धनम्। ये यजुर्वेद यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद का कान्व शाखा का ये मंत्र है, इसमें 40 अध्याय आते हैं। यजुर्वेद में दो शाखाएं चलती है, कन्व शाखा और माध्यन्दिन शाखा। उसमें कन्व शाखा में 40 अध्याय है, 40 अध्याय का उसमें से 39 अध्याय में वेदों ने कर्म का और उपासना का प्रतिपादन किया है। और ये 40वां अध्याय ईशावास्य उपनिषद के नाम से जाना जाता है। इसके पूर्व में कर्म और उपासना इसलिए बताई जाती है क्योंकि ज्ञान का या ईश्वर साक्षात्कार का अधिकारी बनने के लिए कर्म के द्वारा मल की शुद्धि, क्योंकि हमारा अंतकरण 3 दोषों से दूषित है। हमारे अंतकरण में 3 दोष माया के ही ये 3 दोष है और इन दोषों से जो ज्ञान का साधन अंतकरण या बुद्धि इन दोषों से दूषित है, इसलिए हमें सत्य का बोध नहीं होता है। असत्य को ही हम सत्य मान बैठते हैं। ये विपरीत भावना हमारी जो बन रही है इसका कारण है ये दोष। जैसा कोई नेत्र में तिमिर नाम का दोष होता है तो एक वस्तु की दो वस्तु दिखाई देती है। मोतिया नाम का दोष आता है आंखों में तो दिखना ही बंद हो जाता है, या दिखता है तो धुंधला धुंधला दिखता है। इसी प्रकार से हमारे अंतकरण में भी ये दोष आए हुए हैं। इन दोषों की निवृत्ति करने के बिना, अंतकरण शुद्ध होने के बिना सत्य का बोध अंतकरण में नहीं होता है। सत्य है परंतु सत्य दिखता नहीं है, सत्य अनुभूत नहीं हो रहा है, और हम उस सत्य का अनुभव करना चाहते हैं, क्योंकि सभी जीवों के लिए अत्यंत प्रिय सत्य ही होता है। झूठ किसी को भी प्रिय नहीं होता है, क्योंकि सत्य ही हमारा जीवन है, सत्य ही हमारा स्वरूप है, और हम सत्य ही हैं। परंतु फिर भी हम अपने को जन्मने वाले मरने वाले मान रहे हैं, सुखी दुखी मान रहे हैं, अनेक प्रकार के दुखों से दुखी मान रहे हैं, अज्ञान के कारण जड़ता, मंदता आदि हमारे अंदर अनुभूत हो रही है। देखो, इनके जो कारण हैं, इन कारण को जब तक दूर नहीं किया जा सकता है, तब तक हमें सत्य का बोध नहीं होता है। हमारे अलावा दूसरी कोई वस्तु सत्य नहीं है, परंतु हम अपने अलावा दूसरी वस्तु को सत्य मान बैठते हैं। इसका कारण यह है कि ये दोष, इसलिए अंतकरण को शुद्ध करने के लिए हमारे वेदों ने कर्म बताया है। कर्म से मल नाम का दोष दूर हो जाता है, उपासना से विक्षेप नाम का दोष दूर होता है, और ज्ञान से आवरण नाम का दोष दूर होता है, तब हमें सत्य का बोध होता है। इसलिए ये तीन कांड बताए हैं। सत्य नहीं है ये बात नहीं है, या सत्य का ज्ञान नहीं है ये बात भी नहीं है, परंतु ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान इन दोषों से आच्छादित है, आवृत्त है। ये जब तक अंतकरण अनावरण नहीं होगा, अर्थात निर्दुष्ट नहीं होगा, तब तक सत्य को हम अनुभूत नहीं कर सकते हैं। वेदांत शास्त्र या वेद किसी वस्तु को आपको प्राप्त नहीं कराते हैं। शास्त्राध्ययन करने का अर्थ ये नहीं होता है कि वेदों को पढ़ने से या उपनिषद को पढ़ने से हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। परमात्मा के प्राप्ति के साधन नहीं है, ये ध्यान रखना। ना वेद परमात्मा की प्राप्ति के साधन है, ना शास्त्र परमात्मा की प्राप्ति के साधन है, क्योंकि परमात्मा तो अप्राप्त कभी है ही नहीं। ये अज्ञानी की समझ है कि ऐसा कर्म करने से हमें परमात्मा मिलेगा, वैसा कर्म करने से हमें परमात्मा मिलेगा, ये अज्ञानियों की मान्यता है। नहीं, ना कर्म प्राप्य परमात्मा है, ना उपासना प्राप्त परमात्मा है, ना ज्ञान प्राप्य परमात्मा है। तो ये साधन फिर जो वेदों ने बताया, ये तो निरर्थक हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएंगे? फिर जब परमात्मा ही नहीं मिलेगा, देखो आप लोगों की ये कल्पना होती है कि ये कर्म करने से हम सुखी हो जाएंगे, है ना? ऐसा जब करने से हम सुखी हो जाएंगे, या ये हम जानने से सुखी हो जाएंगे, है ना? परंतु ये ध्यान रखो, कोई भी कर्म करने से कर्म का फल सुख नहीं है, कर्म का फल आनंद नहीं है, ना जप का फल सुख है, ना ज्ञान का फल सुख है, ना आनंद है। सुख में और तुम्हारे बोध में जो प्रतिबंध है, उस प्रतिबंध को दूर करने के लिए इनकी आवश्यकता है, सुख के लिए नहीं है। सुखी तो तुम हो ही, आनंदित तो तुम हो ही, पूर्ण तो तुम हो ही, अपूर्ण कभी हो ही नहीं, अमृत तो तुम हो ही। अमृतस्य पुत्रा वयम्। और भगवान खुद भी कहते हैं कि मम विवांसो जीव लोके, श्रुति भी कहती है तत्सृष्ट्वा तदिवानुप्राविशत। परमात्मा ने इसको निर्माण किया और परमात्मा इसमें खुद प्रविष्ट हुआ। अनेक शास्त्रों के प्रमाण हैं, श्रुतियों के प्रमाण हैं, पुराणों के भी प्रमाण हैं, स्मृतिकारों के भी प्रमाण हैं, परंतु उस परमात्मा के बोध में, अनुभूति में जो बीच में जो प्रतिबंध है, उस प्रतिबंध को दूर करने के लिए इन साधनों की आवश्यकता है। ये साधन नहीं करेंगे तो प्रतिबंध दूर नहीं होगा, और प्रतिबंध दूर नहीं होगा तो आपको कभी भी बोध नहीं होगा। ये दूर जब हो जाते हैं तब अपना ही बोध होता है। तो कैसा होता है बोध? अभी नहीं है, ये बात नहीं है, अभी भी है, परंतु एक परिच्छिन्न बोध है, परिच्छिन्न बोध, सामान्य बोध है। कल मैंने बता दिया था कि सामान्य बोध है, मैं हूं ये सबको मालूम है, परंतु मैं ब्रह्म हूं ये ज्ञान नहीं है, ये अनुभूति नहीं है। मैं मनुष्य हूं, मैं कर्ता भोक्ता हूं, मैं जन्मने वाला मरने वाला हूं, मैं जीव हूं, अमुक हूं तमुक हूं आदि आदि, तो तुम्हें ज्ञान है, ये ज्ञान है, परंतु ये सामान्य ज्ञान है। और सामान्य ज्ञान में विशेष अज्ञान होता है, और विशेष अज्ञान का मतलब है ये तीन दोष। अविद्या क्या है? इन दोषों का नाम ही अविद्या है। इन तीन दोषों का मतलब ही होता है अज्ञानता। तो इसलिए इन अज्ञानता को दूर करने के लिए वेदों की जरूरत है, शास्त्रों की जरूरत है। महापुरुष भी क्या करते हैं? कोई संत से तुम्हें परमात्मा मिलता नहीं है, संत नहीं तुम्हें परमात्मा को मिलाते हैं, क्योंकि तुम परमात्मा नहीं हो तब तो परमात्मा को मिलाया जाए। संत ये बोध करा देते हैं। क्या करा देते हैं?
बोध।
अरे परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम ही परमात्मा हो। भटकते कहां जा रहे हो? परंतु हमें ये अनुभव नहीं होता, इसलिए वो शास्त्र बताते हैं आपको, शासनात् शास्त्र, आपको शासित करते हैं। शासित का मतलब शुद्ध करते हैं। क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। आपको ही अपना ही बोध करा देते हैं, परंतु किस रूप में? ब्रह्म रूप में, मनुष्य रूप में नहीं, जीव रूप में नहीं, कर्ता भोक्ता रूप में नहीं, आने वाला जाने वाला रूप में नहीं, स्वर्ग नरक में जाने वाले के रूप में नहीं। ये सब द्वंद्वों की समाप्ति करके, द्वैत की समाप्ति करके तुम्हें अपना अद्वैत बोध करा देते हैं। इसके लिए इन शास्त्रों की और महापुरुषों की आवश्यकता है। मैंने कल बताया था तीन कृपा है ना, ईश्वर कृपा, शास्त्र या गुरु कृपा और तीसरी आत्म कृपा। समझना, ये आत्म कृपा क्या है? आत्म कृपा है आपके अंदर अपने को ही जानने से, जानने की उत्कृष्ट जिज्ञासा। ये जिज्ञासा जब होती है तब आपके अंदर पुरुषार्थ का निर्माण होता है, और जिस जीव के जीवन में पुरुषार्थ निर्माण हो गया है उसको समझना आत्म कृपा। कर्म निर्माण होना अलग बात है। क्या कर्म तो स्वाभाविक ही, प्राकृत ही आपके अंदर है ही, पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ को निर्माण कराया जाता है, और जो जीव इस पुरुषार्थ को निर्माण करता है उस पुरुषार्थ का नाम है आत्मकृपा। दूसरे के द्वारा नहीं, ये तुम्हारे अंदर पुरुषार्थ निर्माण होगा तो दूसरे के द्वारा नहीं हो सकता है। ना शास्त्र इस पुरुषार्थ को निर्माण कर सकता है, ना कोई गुरु निर्माण कर सकता है, ना कोई संत महापुरुष निर्माण कर सकते हैं। तुम अपने को ही अपने में ये निर्माण कर सकते, और जब ये निर्माण करते हैं तब तुम्हारे अंदर, इसलिए तो मोक्ष पुरुषार्थ बताया। क्या बताया है? मुमुक्षुता आती है, मुमुक्षुता तुम्हारे अंदर आना आत्मकृपा है। समझे ना? जिज्ञासा आना आत्मकृपा नहीं है, ये जीव कृपा है। क्या? जिज्ञासा निर्माण करना ये जीव की कृपा है। जीव का जब शुद्ध प्रारब्ध निर्माण होता है तो जिज्ञासा निर्माण हो सकती है। क्या? क्योंकि हमारे प्रारब्ध में, प्रारब्ध हमारा जो बना है वो गुणों के आधार से बना हुआ है ना? सत्व रजतम, ये तीन प्रकार से हमारे अंदर जो गुण होते हैं उन गुणों से ही कर्म होता है, और उन कर्मों से ही संस्कार निर्माण होते हैं, और उन संस्कारों से ही प्रारब्ध बनता है। क्या बनता है? प्रारब्ध बनता है, और प्रारब्ध के ही अनुसार भोग होता है, सुख का दुख का। भोग क्या है? सुख या दुख? सुख का भोग होगा या दुख का भोग होगा, ये प्रारब्ध से होता है। उसमें तुम्हारा सत्व गुण सात्विक प्रारब्ध निर्माण हो गया तो वो आपके अंदर इच्छा निर्माण होती है। क्या? इच्छा निर्माण होती, इच्छा। इच्छा जिज्ञासा नहीं है, ये सामान्य है। समझ? इच्छा तो सभी जीवों के अंदर है, ऐसा कोई जीव नहीं कि उसके अंदर इच्छा नहीं है, है ना? इच्छा मन में होती है, ध्यान रखो। इच्छा किस में होती है? ये मन का धर्म है। इच्छा के कारण ही इसको अंतकरण को मन कहा है। पर जिज्ञासा कहाँ होती है? जिज्ञासा मन में नहीं होती, जिज्ञासा बुद्धि में होती है। क्या? ये भेद समझ लेना। जिज्ञासा बुद्धि में होती है। सात्विक इच्छा यदि मन में आ गई और वो भी प्रबल, क्या प्रबल? प्रबल का मतलब तीव्र, तीव्र, समझना। तब वही इच्छा बुद्धिस्त होती है, और बुद्धि में ज्ञान की जिज्ञासा होती है। किसकी?
ज्ञान,
ज्ञान की जिज्ञासा होती है। परमात्मा को जानने की जो उत्कट इच्छा है उसका नाम जिज्ञासा है। देखो, जिज्ञासा में भी दो वस्तु है, क्या? जैसा एक बच्चा पूछता है, आप भगवान का वर्णन करते हैं तो बच्चा पूछता है, मां जो तो आप भगवान की जो बात करते हो, भगवान कहां है? है कि नहीं? तो उसको भी भगवान को जानने की इच्छा हुई कि नहीं है? तो मां क्या करती है, मां क्या करती है, कोई फोटो लेती है और फोटो को दिखाती है, देखो ये भगवान है, है ना? सामान्य इच्छा का फल फोटो दर्शन, फोटो का ज्ञान, फोटो उस फोटो को ही परमात्मा कहा जाकर कह करके उसको बच्चे को बोध कराया जाता है। जो बच्चे के अंदर बोध होता है तो किसका होता है, परमात्मा का ही होता है कि नहीं होता है? बोध ही है ये, कोई मतलब गलत नहीं है परंतु सत्य भी नहीं है, क्या? गलत भी नहीं है तो सत्य भी नहीं है। तो ऐसे परमात्मा को देखने की इच्छा ये अज्ञानियों के अंदर होती है। ऐसा बालक, इसलिए बालक का उदाहरण दिया, उस बालक के अंदर जो जिज्ञासा हो गई है, जैसा ध्रुव के अंदर हो गई थी कि नहीं हुई थी, कहा कि ध्रुव का जब अपमान हुआ, रोता हुआ मां के पास आया और मां को मां ने पूछा तो मां ने बता दिया कि भाई तुम ऐसा सुख चाहते हो अपने पिता के गोद का और तुम सब संपत्ति चाहते हो तो तुम परमात्मा के पास जाओ, परमात्मा के गोद में बैठो, परमात्मा का राज्य प्राप्त करो। तो ध्रुव ने भी पूछा था, उस समय 5-7 साल की उम्र होगी, उसने पूछा कि परमात्मा कहां है, कहा कि वो तो जंगल में है, तो जंगल में चल पड़ा। परंतु जंगल के परमात्मा को प्राप्त मां के वचन से किया कि नारद के वचन से किया? नारद के वचन से। नारद ने परमात्मा को मिलाया, मां ने परमात्मा का ज्ञान तो करा दिया, परमात्मा कहां रहता है, जंगल में रहता है। अब परमात्मा जंगल में नहीं है ऐसी बात है क्या? परमात्मा जंगल में भी है परंतु परिच्छिन्न रूप से, सामान्य रूप से, है ना, सामान्य रूप से। नारद जी ने जो परमात्मा का जो बोध कराया ध्रुव को, या दर्शन कराया, साक्षात्कार कराया, तो वो कैसा कराया? अपरिच्छिन्न रूप से। तो एक सामान्य जिज्ञासा का फल है सामान्य ज्ञान, और विशेष जिज्ञासा का फल है विशेष ज्ञान, अर्थात अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, क्या? अपरोक्ष ज्ञान, परमात्मा की अनुभूति अंदर करना। और जब परमात्मा किस रूप से, जैसा आप भी सुनते हैं और आग बंद करते हो, है ना, मंदिर में जाते हैं, परमा भगवान का दर्शन करते, हाथ जोड़ते, बहुत देर तक देखते हैं, और देखने के बाद क्या करते हैं, आग बंद करते हैं कि नहीं? आग बंद करके आप किसको देख रहे हैं? आग खोल करके भी तो उसी परमात्मा को देख रहे थे, और आग बंद करके भी किसको देख रहे हैं? उसी परमात्मा को देख रहे हैं। देख रहे हैं कि समझ रहे हैं? देख भी रहे और समझ भी रहे, परंतु कैसा समझ रहे? देख भी परिच्छिन्न रूप से, एक रूप से देख रहे हैं, है ना, और उतने को ही तुम परमात्मा समझ रहे हैं, अर्थात परिच्छिन्न परमात्मा का बोध हो रहा है, समझना। व्यापक रूप से नहीं, निराकार रूप से नहीं, अपरिच्छिन्न रूप से नहीं, अव्यय रूप से नहीं, परंतु यहां श्रुति शास्त्र परमात्मा को वो क्या कहती है, परमात्मा कैसा है, शुद्ध है, अपापविद्ध है, अपरिच्छिन्न है, अव्यय है, अविनाशी है, आदि आदि, आनंद रूप है। वो आनंद तो कैसा है, जब तक देख रहे तभी तक है, और देखना बंद हो गया तो आनंद भी नहीं। तो ये जो बोध है ये आचार्य कराते हैं, गुरु कराते हैं शास्त्र के माध्यम से। शास्त्र एक साधन है। क्या है? शास्त्र एक साधन है। किसका साधन है? मैंने पहले अभी बताया, ये ज्ञान का साधन नहीं है, दोष निवृत्ति का साधन है। शास्त्र क्यों बताते हैं आचार्य, शास्त्र का बोध क्यों कराते हैं? क्योंकि उसके बिना, शास्त्र के बिना आपका अंतकरण शुद्ध नहीं हो सकता है, ये तीन दोष दूर नहीं हो सकते हैं। इसके लिए शास्त्र की अत्यंत आवश्यकता है। और ये शास्त्र जब ये हो जाता है, और जब आपने अंदर जब मुमुक्षुता निर्माण होती है पुरुषार्थ से, समझे ना, ये पुरुषार्थ ही मुमुक्षुता। क्या पुरुषार्थ है? ये मुमुक्षुता निर्माण करना पुरुषार्थ है। इसलिए परमात्मा प्राप्ति में कर्म साध्य परमात्मा नहीं है, पुरुषार्थ साध्य है। परमार्थ में पुरुषार्थ की महत्ता है, कर्म की महत्ता नहीं है। संसार में कर्म की महत्ता है, और कर्म के द्वारा जो भी प्राप्त होगा वो संसार होगा, और जो संसार होगा वो नाशवान होगा। कर्म के द्वारा नाशवान वस्तु की ही प्राप्ति होती है, चाहे सुख के रूप में हो, चाहे और किसी भी रूप में हो, वो अविनाशिनी है। परंतु पुरुषार्थ से जो साध्य होता है वो अविनाशी वस्तु की प्राप्ति होती है। इसलिए पुरुषार्थ, पुरुषार्थी बनने का प्रयत्न करना चाहिए। और इन पुरुषार्थ में चार पुरुषार्थ शास्त्रों ने बताए, परंतु तीन पुरुषार्थ कैसे हैं? गौण है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार पुरुषार्थ है, अर्थात हमारे ये चार हमारे जीवन के अंग है, चतुरांग, समझ लेना। किस रूप में? एक कर्म रूप से, एक धर्म रूप से, एक उपासना रूप से, और एक ज्ञान रूप से। क्या? ये ज्ञान रूप से। इसलिए हमारे जीवन में ये चार पुरुषार्थ आना चाहिए। कर्म करना ये पुरुषार्थ नहीं है। अब मैंने कई बार बताया कर्म में और पुरुषार्थ में अंतर क्या है। क्यों गिरीश भाई, कर्म और पुरुषार्थ में क्या अंतर है? नहीं नहीं, आप भूल जाते हैं। चलो भूल जाते तो अच्छा होता है, अब भूला करो तभी तो हम लोगों का धंधा चलेगा, नहीं तो कैसा धंधा चलेगा। देखो कर्म जो है वो क्रिया प्रधान है, संस्कार प्रधान है, गुण प्रधान है। क्या? कर्म में इनकी प्रधानता होती है, गुण की, संस्कारों की और क्रिया की। पुरुषार्थ में ज्ञान प्रधान है। क्या है? पुरुषार्थ में कुछ करना नहीं होती है, या क्रिया की प्रधानता नहीं होती है, गुण की प्रधानता नहीं होती है, ज्ञान की प्रधानता होती है। समझ ली ना? इसलिए कर्म को पुरुषार्थ नहीं समझना है, ये अज्ञानी समझते हैं। इसलिए कर्म के साथ शास्त्र ने पुरुषार्थ लगा दिया है। इसका अर्थ क्या होता है? जिस कर्म में ज्ञान की प्रधानता है वो कर्म पुरुषार्थ है, समझ गए ना। क्रिया की प्रधानता का महत्व नहीं है, क्रिया साध्य कर्म है, परंतु कर्म पुरुषार्थ बनाने के लिए ज्ञान की प्रधानता है। आप यहां बैठे हो क्या? यहां बैठे हो कि नहीं? कुछ कर रहे हो क्या? हाँ,
श्रवण कर रहे
हैं। कर रहे हैं ना?
श्रवण कर रहे
हैं। आपके कर्म को दिखता नहीं है, का दिखता है? एक चुपचाप, बिल्कुल आग बन करके चुपचाप बैठे हुए हैं, समझ ना। अर्थात इंद्रियों को भी आपने निष्क्रिय किया, परंतु बुद्धि से जग गए। किससे जग गए आप? आप जो श्रवण कर रहे हो, ये कर्म हो रहा है, परंतु ये कौन सा कर्म? अपना इंद्रिय क्रिया के द्वारा कर्म हो रहा है क्या? कर्म हो रहा है, परंतु इंद्रियों के द्वारा हो रहा है। इंद्रिय साध्य है नहीं? ये श्रवण करना ये कर्म है, परंतु ये कर्म क्या बन रहा है? पुरुषार्थ बन रहा है, ध्यान रखो। पुरुषार्थ क्या चीज है? आपका ये जो कर्म है, बैठे हैं आप, ये बैठा, ये आपका बैठना पुरुषार्थ बन रहा है। कौन सा? ज्ञान इसके साथ होने के द्वारा कारण ये कर्म पुरुषार्थ बन रहा है आपका, ये धर्म पुरुषार्थ बन रहा है। क्या बन रहा है? ये धर्म, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये कहा है कि नहीं है? ये धर्म रूप पुरुषार्थ बन रहा है आपका, समझे ना। ये ऐसा ही है कर्म, परंतु इस कर्म को आप धर्म रूप पुरुषार्थ बना रहे, ध्यान रखो। कैसा बन रहा है आपको नहीं मालूम? काहे मालूम? नहीं मालूम, क्योंकि आपको इस कर्म में कर्तापन आपके अंदर नहीं आ रहा है। कहा रहा है कर्तापन नहीं आ रहा है। जिस कर्म में कर्तापन नहीं आता है, कर्तापन का अभिमान नहीं निर्माण होता है, वो कर्म पुरुषार्थ बनता है। क्या? वो कर्म पुरुषार्थ बनता है। आपका सोना भी पुरुषार्थ बन सकता है, आपका हर कर्म पुरुषार्थ आप बना सकते हैं। केवल शर्त यही है कि उसके अंदर कर्तापन नहीं हो। और कर्तापन कब नहीं होता है? जब ज्ञान होता है। ज्ञान ही आपके कर्तापन को क्या करता है? मिटा देता है। तो कहने का तात्पर्य, ये चार जो पुरुषार्थ बताए हैं, ये चार पुरुषार्थ का भी कुछ तात्पर्य है। धर्म अर्थ काम, ये भी हमारे अंतकरण के शुद्धि के साधन होते हैं, समझ ना। जिन कर्मों के है कर्म सभी में, मुख सुनता में भी कर्म है, परंतु कर्म की वहां अत्यंत गौणता है, ज्ञान की प्रधानता है। कर्म नहीं ऐसी बात नहीं है, और कर्म में ज्ञान नहीं ऐसी बात नहीं है, परंतु वहां ज्ञान गौण है और क्रिया प्रधान है, समझ लीजिए ना। तो ये दोनों अंतर समझना चाहिए। तो ये जब ये हो जाता है, तब शास्त्र ने जो बोध कराया या आचार्य जो बोध कराते हैं, क्या बोध कराते हैं? आचार्य कहते हैं कि तत्वमसि, क्या कहते हैं, तत्वमसी, तब वह ब्रह्म वह परमात्मा तुम ही हो। जिस परमात्मा को तुम जानना चाहते हो, जिस परमात्मा को तुम प्राप्त करना चाहते हो, जिस परमात्मा को तुम प्राप्त करके अमृत बनना चाहते हो, वह खुद तुम हो। तब उसको इसकी अनुभूति होगी। बिना अंतकरण शुद्धि की अनुभूति नहीं हो सकती है। तो अंतकरण शुद्धि के लिए इनकी आवश्यकता है। ये ज्ञान करा रहे हैं, परंतु ये ज्ञान कैसा है? परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान क्या? ये परोक्ष ज्ञान है। शास्त्रों के द्वारा जो ज्ञान होता है या आचार्य के द्वारा जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान परोक्ष ज्ञान होता है। इस परोक्ष ज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान बनाना होता है अपने पुरुषार्थ से। जो परोक्ष ज्ञान है आचार्य के द्वारा या शास्त्रों के द्वारा जो आपको मिल रहा है श्रवण करने से, ये अपने पुरुषार्थ के द्वारा इसको अपरोक्ष करना होता है। अपना पुरुषार्थ क्या है? मनन, जिसको चिंतन कहते हैं। चिंतन क्या? चिंतन, कोई ध्यान भी कह सकते हैं इसको। ध्येय चिंतने, ध्यान का अर्थ ही होता है चिंतन। क्या? बिना कुछ करे ही जो हो रहा है ज्ञान की प्रधानता से। देखो, ध्यान में ज्ञान की प्रधानता होती है, चिंतन में क्रिया की प्रधानता नहीं है, ध्यान की प्रधानता है। आपके संस्कारों की, गुणों की भी प्रधानता नहीं है, आपके ज्ञान की प्रधानता है। तो ये चिंतन के द्वारा, ये जब आचार्य ने जो उपदेश किया है या शास्त्र ने जो प्रामाणिक तुम्हें बोध कराया है, इसको अपने चिंतन के द्वारा अपरोक्ष करना होता है। और जब ये अपरोक्ष ज्ञान होता है, क्या ये अपरोक्ष ज्ञान होता है, तब इसको साक्षात अपरोक्ष करने की, साक्षात अपरोक्ष ज्ञान करने की जो उत्सुकता या उत्कंठता या व्याकुलता है, उसका नाम है मुमुक्षुता। मुमुक्षुता क्या है? मुक्त होने की, छूटने की इच्छा सबके अंदर है, तो क्या ये सब मुमुक्ष हो जाएंगे क्या? नहीं। जब परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान साधक अपने जीवन में अनुभव करता है अंदर में अपने चिंतन के द्वारा, क्या अपने चिंतन के द्वारा जब अनुभव करता है, इस अनुभव को ही लेकर के साक्षात करने का मतलब होता है। अब ये अनुभव तो कर रहा है, परंतु इस अनुभव में भी त्रिपुटी है कि नहीं है? इस ज्ञान में भी त्रिपुटी है, ध्यान रखो। क्या है?
त्रिपुटी,
त्रिपुटी है, ज्ञाता ज्ञान गेय, समझे ना। ये त्रिपुटी की समाप्ति करने की जो व्याकुलता है, उसका नाम मुमुक्षुता है। बहुत गहरी चीज है, समझ लेना। इसलिए भगवत पाद शंकराचार्य जी ने तीन वस्तु की अत्यंत दुर्लभता बताई है। दुर्लभम त्रयमेव एतत् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वम् मुमुक्षुत्वम् महापुरुष संश्रयः। परमात्मा के ज्ञान की जिज्ञासा जीवन में निर्माण हो जाए तो उसके जीवन में मनुष्यता आ जाती है। क्या मनुष्यता क्या है? मनुष्य बनना, मनुष्य होना दूसरी बात है, प्रारब्ध की खेल है, परंतु मनुष्यता जो है, मनुष्यता प्रारब्ध से प्रारब्ध में नहीं होती है, आपको पुरुषार्थ से प्राप्त कराई की जाती है। ये परमात्मा के ज्ञान की जिज्ञासा जिस जीव के जीवन में आ जाती है, उस जीव के जीवन में मनुष्यता आ जाती है। ये मनुष्यता बड़ी दुर्लभ है। दूसरी वस्तु है मुमुक्षुता। ये मुमुक्षुता बड़ी कठिन है। बहु नाम जन्म नामंते, इसलिए तो भगवान कह रहे हैं कि ये मनुष्य मुमुक्षुता जीवन में सबके जीवन में नहीं आती है। बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, समझना। ये मुमुक्षुता अत्यंत दुर्लभ। और तीसरी वस्तु है महापुरुष संशय। महापुरुषों का संशय संगति होना। जिस महापुरुष को ने लाल कपड़े वाले का भभूत लगाने वाले या जटा बढ़ाने वाले ये महापुरुष नहीं है। हम महापुरुषता का एक उपांग मात्र है, गलत नहीं है, समझ। परंतु इसी को ही तुम महापुरुष समझ रहे तो तुम्हारी मूर्ता है। इसको ही जो महापुरुष समझते हैं ना, वही तो धोखा खाते हैं। फिर क्या, वही धोखा खाते हैं। महापुरुष किसको कहते हैं? जो जीवात्मा, जो जीव अपने को ब्रह्म के रूप में अनुभव करता है। महान चासो पुरुष। पुरुष कौन? ये जो आत्मा है, आत्मा। इस आत्मा का ब्रह्म के रूप में जो अनुभव कर रहा है, ये अयम आत्मा ब्रह्म। जो श्रुति ने कहा है, ये अनुभव जिसके अंदर हुआ है, ऐसा जो जीव है उसको महापुरुष कहा जाता है। जिसको शास्त्र ने ज्ञानी की तीन कोटियां बताई है, ब्रह्मविद, ब्रह्मविद वरिष्ठ और ब्रह्मविद वरियान। तो इसमें जो ब्रह्मवेत्ता है वो महात्मा है, संत है। क्या? जो ब्रह्मवेत्ता है वो संत कह सकते हैं, महात्मा कह सकते हैं, पर महापुरुष नहीं। ये जो ब्रह्मविद वरिष्ठता जब आ जाती है, या ब्रह्मविद वरिष्ठता जब आ जाती है, तब वो महापुरुष बन जाता है। और जब ब्रह्मविद वरियान होता है तो महापुरुषता भी, महापुरुष भी नहीं कहा जाता। उसकी संगति असंभव है, उसकी संगति ही नहीं होती है। इसलिए ब्रह्मविद वरिष्ठ ऐसे जीव का संबंध होना बड़ा दुर्लभ है, क्वचित क्वचित। इसलिए तो भगवान ने कहा, मनुष्यानाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। जानते तो बहुत से हैं, परंतु कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, तत्वरूप से। तत्वरूप से का मतलब क्या? तत्व रूप से का मतलब होता अपने को ही, अपने को ही ब्रह्म के रूप से अनुभव करना। जीव रूप से नहीं, ईश्वर रूप से नहीं, संसार रूप से तो है ही नहीं, वो अनुभव भी नहीं होता है लास्ट में। तो ऐसी जब स्थिति आ जाती है, उसका वर्णन नहीं किया जाता, इसलिए उसकी संगति भी नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा ही ये करने के लिए, आपको उस परमात्मा का ज्ञान कराने के लिए, उस परमात्मा का परोक्ष ज्ञान कराने के लिए ये श्रुति तत्पर है। क्या, किसको तत्पर है? जिसका अंतकरण कर्म और उपासना के द्वारा पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया है। समझना, देखो कर्म, कर्म की कर्म बताया है, कुर्वन्येवेह कर्माणि, आगे के श्लोक में यहां भी बता दीजिए। हम कर्म भी नहीं करते हैं, कर्म समझते या मानते हैं। समझे ना, कर्म क्या चीज है? कर्म करना चाहिए, कर्म में भी एक विकर्म है। क्या? कर्म है, एक विकर्म है और एक अकर्म है। समझना, तो कर्म कैसा होना चाहिए जो अकर्म रूप हो जाए। समझना, कर्म उसी का नाम है। जो कर्म आपके अंदर अभिमान निर्माण करे, अहंकार निर्माण करे, कर्ता भोक्तापन निर्माण करे, वो विकर्म है। विकर्म उसको क्या कहा जाता है? विकर्म कहा जाता है, या कुष्ठित कर्म। शास्त्र उसको कर्म नहीं करता, ऐसे कर्म को निषिद्ध कर्म कहती है। क्या कहते हैं?
निषिद्ध।
इसलिए कर्म के लिए लोक प्रमाण नहीं है, भगवान ने स्पष्ट कर दिया है। कर्म करने के लिए लोक प्रमाण नहीं है। तस्मात् शास्त्रम् प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितो। उसके लिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र अर्थात शास्त्र ने जिस कर्म का जैसा विधान किया है उसी प्रकार से आप कर्म करते हैं, अर्थात शास्त्र के द्वारा शासित होकर, शिक्षित होकर जब हम कर्म करते तब वो कर्म बनता है। क्या ऐसा ही हम तो लोगों का देखा देखी सुना, किसी का सुन देते हैं और हम करने लगते हैं, वो विकर्म कहा जाता है। तो वो विकर्म आपके अंदर दुख का निर्माण करता है। कर्म कभी दुख का निर्माण नहीं करता है, ध्यान रखो। कर्म सुख का निर्माण करता है। इसलिए तो कर्म को क्यों श्रुतियां कहती है, कर्म करने का आग्रह क्यों करते हैं? कर्म तुम्हारे अंदर सुख का निर्माण करता है, उपासना तुम्हारे अंदर आनंद का निर्माण करती है और ज्ञान तुम्हारे अंदर अमृतत्व लाता है। समझ रहे ना, कर्म सुख के लिए करना चाहिए, दुख के लिए नहीं। परंतु हमारा कर्म होता है दुख के लिए। क्या? हमारा देखना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, चलना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है। परंतु ये ध्यान रखो, हमारा ये सब कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाला कर्म कैसा बनना चाहिए? सुख रूप बनना चाहिए, सुख रूप। उस वो कर्म जो है, वो कर्म करती भी श्रुति 100 वर्ष तक जीने का आदेश करती है। कुर्वन्येवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह, 100 वर्ष तक जिए। अभिमान निर्माण करने वाले, काम निर्माण करने वाला, क्रोध निर्माण करने वाला, लोभ का निर्माण करने वाला, ईर्ष्या द्वेष निर्माण करने वाला या भेद बुद्धि निर्माण करने वाला कर्म विकर्म कहलाता है। ये विकर्म ही तो, विकर्म का मतलब होता है विरुद्ध कर्म, उल्टा कर्म। समझना, जो करना चाहिए वो नहीं करते और जो नहीं करना चाहिए उसी को ही करणीय मान लेते हैं। मानते हैं कि नहीं? हम फोन आ गया तो आप बैठ सकते हो या घर से फोन आया या किसी का और फोन आया तो फट दी से उठ करके चल पड़ते हैं सत्संग या बाड़ में। तुम्हारी कर्म में निष्ठा है कि विकर्म में निष्ठा है? और सुख की कल्पना करते हो कि हम सुखी हो जाएंगे, ये नादानी है, समझो इसको। वो बिगड़ा तो तुम्हारा कुछ बिगड़ना नहीं, परंतु ये यदि बिगड़ गया तो तुम्हारा जीवन चौपट हो जाएगा, इसकी भी तुम्हें कल्पना नहीं है, समझ रही ना। इसलिए इसका महत्व जीवन में लाओ। यही कर्म करने के लिए शास्त्र आदेश करता है। शास्त्र कहीं कर्म की निंदा नहीं करता है, ना कोई महापुरुष कर्म की निंदा करते हैं। शास्त्रियां भी कर्म करने का आदेश देती है, महापुरुष भी कर्म करने के लिए कहते हैं, और कर्म करना ही चाहिए, परंतु कर्म कैसा करना चाहिए, कर्म के वर्म को समझना चाहिए। हमारा देखना भी कर्म बन जाए, जो कर्म कर्म बन जाता है वो कर्म धर्म रूप बन जाता है, ये ध्यान रखो। कर्म ही धर्म है, परंतु कर्म को धर्म बनाना हमारा पुरुषार्थ है। हम कर्म को धर्म बना सकते हैं, धर्म को उपासना बनाना, धर्म को भक्ति बनाना, ये हमारा पुरुषार्थ है। यही कर्म है, इस कर्म को आप धर्म भी बना सकते, इस कर्म को आप भक्ति भी बना सकते, इस कर्म को आप उपासना बना सकते, इस कर्म को आप योग बना सकते, इस कर्म को आप ज्ञान भी बना सकते। एक ही कर्म है, समझ लीजिए ना। कर्म धर्म, धर्म भी है, कर्म भक्ति भी है, कर्म उपासना भी है, कर्म योग भी है ना। कर्म योग बताया कि नहीं भगवान ने, कर्म योग भी है और कर्म ज्ञान भी है। और कर्म आपको मुक्ति का साधन भी है। करना तुम्हारे पुरुषार्थ के ऊपर है, तुम्हारे ऊपर है। इसलिए स्वतंत्र कर्ता शास्त्र योनित्वात्, समझे, शास्त्रों ने कर्ता को स्वतंत्रता दी है, परंतु स्वतंत्रता का अर्थ ही हम स्वच्छंदता समझते हैं और जैसा आए वैसा करते जाते हैं। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में बड़ा अंतर है। आज के लोग स्वच्छंद होना चाहते, स्वतंत्र होना नहीं चाहते हैं। क्या आज का समाज क्या चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है कि स्वच्छंद होना चाहता है? हा? मन के गुलाम बनना चाहते हैं। स्वच्छंदता का मतलब होता है मन का गुलाम, और स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र कब होता है जीव, मालूम है आपको? आत्मनिष्ठ होता है तब, ज्ञान निष्ठ होता है तब। ज्ञान तुम्हें स्वतंत्र बना सकता है, परमात्मा तुम्हें स्वतंत्र बना सकता है। परमात्मा निष्ठ हो जाओ तो तुम स्वतंत्र है, परंतु हम तो भोग निष्ठ बन रहे हैं। क्या निष्ठ बन रहे हैं? भोग निष्ठ वाला कभी भी स्वतंत्र हो सकता है क्या? नहीं। इसलिए स्वतंत्रता को समझना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि ईशावास्यमिदं सर्वम्, ये श्रुति आपको परमात्मा का परोक्ष ज्ञान करा रही है। परमात्मा को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो सभी के अंदर व्याप्त है। अंदर भी वही है, बाहर भी वही है, नहीं उसके अलावा कुछ है ही नहीं। इसका तात्पर्य क्या है? अवास्य का मतलब क्या होता है? अवास्य का मतलब आच्छादित करना, अंदर भी और बाहर भी। जैसा एक कपड़े की ही या कपास की बनाई हुई एक गुड़िया है और वो पानी के अंदर डाल दी, तब उस गुड़िया के अंदर भी क्या है? दिखती तो हो गुड़िया है, परंतु है क्या? पानी। अंदर भी पानी है और बाहर भी पानी है। पानी ने उस गुड़िया को क्या कर दिया? व्याप्त कर लिया। इसी प्रकार से ईश्वर भी इस जगत को व्याप्त है, समझना। जगत उस ईश्वर के अंदर व्याप्य है, व्याप्य। इसलिए मेकाओं से नस्तितो जगत। भगवान ने अर्जुन को कहा, पहला तो जगत है ही नहीं, परंतु फिर भी तुम मान रहे हो। तो भगवान कहते हैं कि मेरे एक अंश मात्र में जगत है। कितने? जैसा आपके शरीर में एक तिल होता है, तिल। अब वो बताओ कि वो तिल तुम हो कि नहीं है। तिल अलग दिखता है कि अलग होता है?
दिखता है।
ऐसा ही जगत परमात्मा का तिल समझ लो, समझे ना? तो वो तिल भी परमात्मा ही है। तिल परमात्मा से अलग नहीं है, है ना? दिखता अलग जरूर है, परंतु होता है क्या? अलग देख रहे ये करने के लिए जाओगे तो तुम्हारे अलावा तिल अलग मिलेगा? ऐसा ही तुम जगत को देखने के लिए जाओगे तो तुम्हारे हाथ में क्या आएगा? परमात्मा के अलावा कुछ आता है? जगत नाम की कोई वस्तु है क्या? जगत दिख रहा है परंतु है नहीं, हो नहीं रहा है, इसका श्रुतियां निषेध करती है। यही बात को समझाने के लिए इस उपनिषद का आरंभ होता है। जगत्याम जगत, इस संपूर्ण जगत के अंदर जो जगत है वो परमात्मा के द्वारा आच्छादित है। आज हमने रात में समाचार सुना था कि स्वामी जी की कुछ तबीयत अच्छी हो गई है, तो शायद आज छुट्टी मिलने वाली है, फिर देखेंगे जैसा होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।